بڑے بڑے جو اچھے پرش رہے ہیں اور ساتھ میں رہ کر کے جنہوں نے اپنی آتما کا کلیان کیا, انہوں نے تین بات پردھان دیکھی, جو تلا در بھائی اور نند بھدر بھائی. تلا در بھائی کی جو کتھا ہے وہ مہابھارت کے بعد آتی ہے اور پدم پران کے وہاں بھی آتی, نند بھدر کی پدم پران میں سکند پران میں آتی, پدم پران کی ایک دم تو ہمارا خیال ہے جو سکند پران میں ہے. تو ان میں ان کے چرتروں کے وہاں تین بات نیچے طور سے ملی, ایک تو سمتا ملی, بے سمتا نہیں, جیسے اپنے چورو رشی کل کے بیچ کے وہاں سب کے ساتھ سم ویوہار ہے, چاہے غریب کا لڑکا ہو چاہے دھنی کا ہو, سب کے ساتھ میں سب پرکار کا ویوہار جو ہے سب سمان کیا جائے, بھوجن میں, بستر میں, پڑھائی میں, اور جاتی جو چاہے براہمن کو لڑکو چاہے بھائی کو, چاہے غریب کو چاہے دھنی کو, چاہے چھوٹی اوسط ہو چاہے بڑی اوسط ہو, چاہے اس میں بنگال کو لڑکو چاہے ڈمپ کو پداھیکاری کو, بھوجن جو ہے, بستر جو ہے, پڑھائی ہے, ویوہار ہے, سب کے ساتھ کے وہاں سمان, یہ جو سمتا ہے یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے. اور سادھک میں بھی سمتا ہونی چاہیے اور سدھ میں بھی سمتا ہوں, سدھ میں تو سمتا ہوئی ہے اور سادھک میں بھی سمتا جب تک نہیں ہے تب تک اس کے جیت کے وہاں کمی ہے. سمتا جو ہے امرت ہے, امرت کی وہاں پیاری لاگے, آپ کو بھی جو سم ویوہار ہے تو دوسرے نے پیار لاگے تو ایسا کیا کریں, سب سے بڑھ کے جو متر لگے وہ امرت ہے. تو یہ اصلی امرت ہے, نراکار روپ امرت ہے سم جو ہے, کیونکہ ساکشات پرماتما سم ٹھہرا, اس واسطے جو دنیا میں جو سم ہے اس پرماتما کو جو سم سوروپ ہے وہ کوئی پرتیم ہے. سم کا جو ویوہار ہے, سم جو بھاو ہے, یہ ایک پرکار سے جو چیز ہے پرماتما چیتن ہے, جو پرماتما نے پراپت ہو جائے تو اس کے جڑ انت کرن کے وہاں بھی سمتا آ جائے, جو پرماتما نے پراپت ہو جائے پرماتما سم ہے, یہی بات دکھائی گیتا میں, یہی تیز گیتا ہے سر گو ایسا سامی سدھنگ نے نردو سمی سمندر میں تسمات برمنی سے چیتا, ان پرشوں کے دوارا سنسار یہیں چیتا گیا جن میں جیون مکت ہے, کون جن کا من سمتا میں چیت ہے اس کی برہم کے سروپ بن چکی ہے, کیونکہ برہم سم ہے اور نردوش ہے اس لیے ان کا جو ہے جن کا سم ہے من سم ہے تو وہاں نردوشتا ہے اور اس کی پرماتما کے سروپ میں چیتی ہے یا کسوٹی ہے. گیتا جو ہے پانچ سے لوگ انیس میں یہ بات بتلائی, تو یہ سدھ پورش میں بتلائی, سادھک میں تو کئی ایک پرکار سے دے تو وہ سادھک ہی نہیں, کرم یوگ کے سادھن کے وہاں بھی سمتا کی ضرورت ہے, جان یوگ کے سادھن کے وہاں بھی سمتا کی ضرورت ہے. یوگ نشا سانچ نشا, سانچ نشا کو مطلب جان نشا, یوگ نشا کو مطلب ہے کرم یوگ, اور اس کرم کے ساتھ کے وہاں بھکتی سمان بھاو سے تو رہتی ہے, اور وشیش روپ سے انہیں سے بھکتی پردھان کرم یوگ ہو جاتا, گون روپ میں رہتی ہے سامان روپ میں بھی رہتی ہے, جن گون روپ میں بھکتی ہے وہ تو کرم پردھان کرم یوگ ہے, اور سامان روپ میں رہ رہے وہ ایک پرکار سے بھکتی سامان کرم یوگ ہے, اور وشیش روپ سے جہاں بھکتی رہے تو بھکتی پردھان کرم یوگ ہے, کنتو سمتا سم ہے. ایک تو یہ بات سمتا کی دیکھی تلادر بھائی کے ماں تو نند بھدر بھائی بھائی تو اس کو ٹھیک پوچھ رہے, دوسری بات ان میں دیکھی گئی ستتا, ست جو मानी कुछ भी नहीं, सत्य विवाह। तीसरी बात उनमें देखी गई स्वार्थ को त्याग। तो तीनों जो है कर्मयोग के नाम इनकी प्रधानता है और तीनों एक प्रकार से एक स्थान हो जाए तो मुक्ति के देने वाले हैं। ये तो निष्काम भाव मुक्ति के देने वाला है, सत्य तो मुक्ति के देने वाला है और समता मुक्ति के देने वाली। समता तो मुक्ति की कसौटी है, ये मुक्त पुरुष की कसौटी है। समझो कि जहाँ सब समता वही मुक्ति है। तो हर एक माता बहन भाइयों को तीन बात को विशेष रूप से धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए, सतता समता और स्वत्याग। स्वत्याग है निष्काम भाव है, ये निष्काम भाव जिसके साथ में जुड़ जाए वो निष्काम कर्मयोग हो जाए। किसी भी कर्म के साथ में निष्काम भाव जुड़ जाए उसको नाम कर्मयोग है। उसकी बड़ी प्रशंसा गीता के वहां है, अनासिस कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यो संन्यासी से योगी से निर्गणी नशा करिए। जो कुछ करने योग्य जो कर्तव्य कर्म है उसको करता है, फल से आश्रय से रहित होकर, फल नहीं चाहता यानी निष्काम भाव से करता है, कुछ कामना न रखकर के कर्तव्य कर्म का पालन करता है। तो उसके लिए कहा जो योगी है वह संन्यासी है, केवल अग्नि के त्यागने वाला क्रिया के त्यागने वाला योगी सन्यासी नहीं। केवल सत्य की मुक्ति हो जाए, केवल निष्काम भाव के यानी त्याग से मुक्ति हो जाए, केवल समता से, और तीनों एक भी अवश्य करना चाहिए। परमात्मा में प्राप्त होने के बाद अपने आप ही आ जाते, साधक में भी समता दिखाई और सिद्ध में भी। जहां सांख योग को साधन आए, ज्ञान योग को गीता की दूसरी अध्याय के वहां एक 11 श्लोक से लेकर के 30 के श्लोक तक है, वहां भगवान कहते हैं अर्जुन को, यंग हीन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषस्य समदुःख निःसन्देहं सौमृतत्वाय कल्पते। तो सांख्य योग को साधक है, जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं करते हैं के द्वारा जो व्यथित मैंने दुखित नहीं होता है, और सुख और दुख में जो समय ऐसा जो धीर पुरुष है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है, अमृत की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। अमृत है तो परमात्मा कोई बात है, ब्रह्म कोई बात है, तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो योग हो जाता है। कौन कि जो सुख दुख में समय ऐसा जो धीर पुरुष है, जो विषय के द्वारा या समझो कि शीत उष्ण सुख दुख आदि दोनों के द्वारा जो विचलित नहीं होता, एकदम अटल खड़ा रहता है, उसकी ये महिमा है। और योग के मां भी सुनता की आवश्यकता दिखलाई, प्रधानता बनवाई कि योगस्थ उर कर्माणि और संयम तत्व धनंजय और सिद्ध सिद्ध समूह भूतवा समत्व योग उच्चते। अर्जुन तू योग में स्थित होकर कर्म आचरण कर, आसक्ति को त्याग करके और योग में स्थित होकर तू कर्म को आचरण कर। कार्य की सिद्धि असिद्धि में और फल की सिद्धि असिद्धि के मां जो समान होकर करके तू आसक्ति को त्याग करके कर्म को आचरण कर, क्योंकि सिद्धि और सिद्धि में जो समता है उसका नाम योग है। अरे योग जो है एक प्रकार से वही कर्मों के बीच के मां कुशलता है। योग है कर्म सुकौशलम, कर्म सु कर्मों के बीच में योग जो है निष्काम जो भाव है यही बुद्धिमता चतुरता कुशलता है। अज्ञान दोनों सिद्धांतों को आप ले सकते हैं, वहां भी समता की प्रधानता है। दूसरी जाति 38 के श्लोक में सुख दुख समय कृतवा लाभ लाभ दया दया तत्व युद्धा युद्ध नहीं पापों वास्ते सुख में और दुख में लाभ हानि में जय पराजय के मां समान होकर के तू क्षत्रिय इस वास्ते युद्ध करो, चलो धर्म है तो युद्ध के लिए जो इस काम के वास्ते लग जा खड़े हो जाए। तो ये जो है सांख बुद्धि से ये योग बुद्धि से ही, तो ये बात दिखलाई गई कि साधन अवस्था के मां भी समता की जरूरत है, तभी मुनि सिद्ध बनता है। तो सिद्ध होने के बाद तो उसके वहां समता अपने आप ही आ जाती, ज्ञान की ताकि वहां सिद्धों के लक्षण बतलाए, महात्माओं के लक्षण बतलाए, उन प्रकरण के बीच के वहां समता लाकर के रखी थी। बाहर में जाते वहां सीमान पुरुषों के लक्षण बतलाए, तो वहां भी समता है। समय शत्रु से मित्र से तथा माना अपमानी हो शीतो सुख दुखी तो समय संग विवर्जित हो तुल्य निंदा सतीर मौनी संतुष्ट हो इनके नजीत अनिकेत श्रीमती भक्तिमान ने प्रियो नर। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है, कहता का समय शत्रु से मित्र से जो शत्रु मित्र में जिनका समभाव है पक्षपात नहीं, तथा माना अपमानी और मान और अपमान की प्राप्ति में भी जिनका संभाव है, और शीतोष्ण सुख दुख हेतु और शीतोष्ण सुख दुख में भी संभाव है, तो मैं सब में संभाव है। समस्त प्रवृत्ति मित्र से तथा माना अपमान हो शीतोष्ण सुख दुख हेतु समय संग विवर्जित है, जो आज के से रही गए और तुम जिंदा प्रतिर मोहनी संतुष्ट हो इनके निश्चित तुम निंदा सुतीर मोहनी। तो तुम निंदा स्तुति होने को मतलब है कि निंदा स्तुति के मन तो सम हो और परमात्मा के स्वरूप का मनन करने वाला हो, संतुष्ट होने के निश्चित माने जो भी कुछ आगे के प्राप्त हो जाए उसी में आनंद माने, अनित श्रीमती भक्ति मान में पूजन है, जो देह के मां और अपने घर के मां अभिमान से रहित है, देहाभिमान से रहित है, बुद्धि है अचल है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। यह बात भगवान ने गीता के बारे में जाके 18 और 19 के श्लोकों में यह बात कही। तो भक्तिमान पुरुषों के जहां लक्षण लिखी उस कोटि के महापुरुषों के लक्षण लिखे भगत प्राप्त पुरुषों के उनके बीच के मां समता है तो दिख रहा है। ऐसे ज्ञान के मार्ग में सम दुख है सुख है स्वस्थ है समलोष्ट सम कांचन तुल प्रिया प्रियो धीर तुल निंदात्म संस्कृति मान अपमान मित्र हरिपक्ष सर्वारम परित्यागी गुणातीत सोच्य थे। वह गुणातीत कह रहता है, तो गुणातीत जो पुरुषों के लक्षणों के वहां भी समता है, सुख और दुख में जो समय जैसे सुख वैसे दुख संदुष्टा तुम कांचन तुम जो पत्थर है और कांचन माने सुवर्ण लोक माने लोग कहते हैं गोबर और माटी मिलाकर जो चौका दिया जाता है उसे जो बच जाता है फेंकने के लायक उसको लोक कहते हैं, और लोग कहते हैं लो का जो मैल है जो फेंकने के लायक उसको लोग कहते हैं। तो जैसा एक गोबर माटी का एक समझो कि लोदा और जैसा ही सोना जैसा ही एक प्रकार का पत्थर सबको समान भाव से समझता है गुणातीत। प्रिया प्रियो प्रिय मन मन के अनुकूल और अप्रिय मन के प्रतिकूल दोनों में जो संभाव है, चाहे मन के अनुकूल को चीज प्राप्त हो चाहे प्रतिकूल हो, तो दोनों में समता हो जाती है राग द्वेष से रहित हो जाता है, तो फिर समझो कि मुक्त हो जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल सब होने से अनुकूल करता में राज प्रतिकूलता में द्वेष होता है तो हित हो गया, राज द्वेष रहित हो गया, अनुकूलता में हर्ष प्रतिकूलता में शोक होता है तो हर्ष शोक तो हित हो गया। तो ज्ञानी पुरुष ही हर्ष शोक को त्याग करके सुखी होता है, हर्ष शोक को जहाँ से हर्ष शोक को त्याग देता हो। तो अनुकूल और प्रतिकूल में समय धीर माने समझो कि ज्ञानवान और अपनी आत्मा की कोई स्तुति और निंदा करे तो उसमें भी सम, और मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र पक्ष मान और अपमान भी तुल्य माने दोनों में जो सम है और बैरी और मित्र की पक्ष के मा विषम है, उसके कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा सारे आर्मों का त्यागी करता तने के अभिमान से भी है, उस गुणातीत कह रहा था। तो यहाँ गुणातीत के लक्षणों के वहां भी समता की प्रधानता दिख रहा है, सम भाव होना ही चाहिए। तो साधन अवस्था में भी सुन, असिद्ध अवस्था में भी सुन, तो भक्ति के मार्ग वाले में भी आपको उतरा ही समता, ज्ञान के मार्ग में भी उतरा ही, और कर्मयोग में भी ऐसे ही, योग के मार्ग के बीच के मार्ग जितात्मा नाम प्रशाम सत्य परमात्मा समाहित है, चित्तो सुख दुखे सुख विभाजित है, ज्ञान विज्ञान तीव्रतात्मा कूटस्वे योगी समलोषासन कांचन, उसमें भी समय समता ही दिखला दी। जिन्होंने मन को जीत लिया है और जो प्रशांत है, विक्षेप का अतंत भाव है, प्रशांत आत्मा कहते हैं, प्रशांत चित्त वाला कहते हैं, और परमात्मा समाहित है, परमात्मा के मन समस्त प्रकार से जो है समाहित मन उसमें स्थित है, समदोषासन कांचन है, शीत उसमें मैं समय मच्छी पत्र और झेले में समय, मच्छी पत्र सोने के मैं समय, और ज्ञान विज्ञान चंद्र आत्मा, ज्ञान और विज्ञान में जिनकी आत्मा चंद्र है, कुटस्थ तो भी जितेंद्रिय, ऐसा जो कोट की माफक आप अचल स्थित है तो भी जितेंद्रिय, ऐसा जो कोट की माफक आप अचल स्थित है, इंद्रिया विकारण जितनी है, युद्ध इच्छुचते योगी समदोषा समकांगन है, माने पत्थर है मट्टी है ढीला है सब के मन समभाव है, ऐसे योगी को युक्त ऐसा कहते हैं। तो योगी है युक्त है, तो योग युक्त है, उसके लक्ष्य बताए किसमें समता है, फिर भी समता ही बता दें, सुनील मित्र आदिदासी ने मध्यस्थ देश बंधु को साधु सती सपा पेशु संबुद्धि विशिष्ट थी। सूर्य जो है सूर्य को कहते हैं कि जो विनय कर दया प्रेम करने वाला ऐसा सज्जन पुरुष है, और मित्र जो परस्पर के बीच के वहाँ जो दूसरे को पुकार कर वो मित्र, ऐसी माने परस्पर में दया करने वाला, उदासीन माने पक्षपात कर रही, और मध्यस्थ माने पंच, श्रेष्ठ करने वाले बंधु के बीच के मां, पुण्यात्मा में पापी में जिनका सम भाव है वह श्रेष्ठ, इनकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ। तो यहाँ योग के मार्ग के मां भी समता दिख रही, फल के बीच के मां, साधन कार्य के मां भी, सिद्ध अवस्था के मां भी, इसी प्रकार से ज्ञान के मार्ग के बीच के मां भी समता दिख रही, भक्ति के मार्ग भक्ति के साधक में भी और सिद्ध में भी, कुल ज्ञान के साधक में भी और सिद्ध में भी, तो सबके बीच में समता है। तो ये समझना चाहिए कि ये सम जो चीज है बहुत दामी चीज है, इसलिए एक प्रकार से उद्धार करने वाली है, माता पिता की सेवा करने से उद्धार हो जाता है, गुरु की सेवा करने से उद्धार हो जाता है, इसकी भक्ति करने से उद्धार हो जाता है, और पति की सेवा करे तो उसको उद्धार हो जाए। तो बात क्या है, हमारे शास्त्रों में जो बात बताई, इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन यह है कि उसको समता आ जाती, समता में से मुक्ति हो जाती, क्योंकि सम होने से ही राजद्वेष को नाश हो जाए, समता आ जा रहे तो उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गए, आदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भगवान ने लिखा की चौथे अध्याय के अर्थ के श्लोक में बताया कि नहीं ज्ञाने में सदृश पवित्र में विद्या थी, तत्व योग संसद कालीनाथी संसार में ज्ञान के समान, ज्ञान के सदृश से कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, और वह जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति के लिए कहते हैं कि कालीन योग संसिद्ध समय करके योग संसिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य उस ज्ञान को अपनी आत्मा में अपने आप ही पा लेता है, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, सबसे अपने आप ही पा लेता है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसा जो ज्ञान है वो निष्काम कर्म अंत कर्म से धोने पर अपने आप ही उस ज्ञान की प्राप्ति हो करके मुक्त हो जाता है। जी ये समता जो है बहुत कुछ कोटि की चीज है,
तो माता भाइयों को भाइयों को इस विषय में विशेष ध्यान डालना चाहिए कि अपने सम व्यवहार रखना चाहिए, सम बुद्धि करनी चाहिए, सबके मन सम बुद्धि है, सम भाव है और समझो कि वो सम व्यवहार है जो यथायोग व्यवहार है, उचित योग व्यवहार है, न्याय योग व्यवहार है, वही एक प्रकार से सम व्यवहार है। अब ये बात आई कि ठीक है, स्त्री को पति की सेवा करने से, बालकों को माता पिता की सेवा करने से और शिष्य को गुरु की सेवा करने से, भक्त को ईश्वर की सेवा करने से उसमें मुक्ति कैसे हो जाती, तो उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जैसे पति भक्ता स्त्री है तो बेटे अनुकूल और प्रतिकूल जो दो बेटे अनुकूल में राग प्रतिकूल में द्वेष, अनुकूल के वो हर्ष प्रतिकूल में शोक, तो अनुकूलता प्रतिकूलता मिल जाने के कारण से राग द्वेष और हर्ष शोक का एकदम नाश हो जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दृष्टियां एक प्रकार से वो नष्ट हो जाती, कैसे नष्ट हो जाती है, वो चाहती है कि मैं तीर्थ जाऊं, व्रत करूं और उपवास करूं, उसका पति कहता है कि नहीं, उसका मन तो है तीर्थ करने का, व्रत करने का, उपवास करने का, किंतु पति ने कह दिया कि नहीं करना चाहिए, तो अपने मन के प्रतिकूल आदत से चाहिए प्राप्त होया तो प्रतिकूलता पर चोट लगती है, उसको तो पति से अनुकूल करना पड़ता है, अपनी जो अनुकूलता है तो छोड़नी पड़ती है, तो अपनी जो अनुकूलता है वो नहीं कर सकती, तो अनुकूलता पर अनुकूलता का बार बार त्याग करे तो उसे चोट पड़ने से फिर अनुकूल भाव पहले ही वर्जित किया। ऐसे मन के जो कोई प्रतिकूल काम है कि जो उसका पति है उसके मन के कोई विपरीत काम करता है और उसको अच्छा नहीं लगता है, अपने पति को हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करती है किंतु वो मानता नहीं, तो अपना प्रतिकूल विषय जब आता है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, और उसके मन के कोई काम प्रतिकूल भी हो और पति उससे कराना चाहे और बाध होकर करना पड़े तो ये प्रतिकूलता के ऊपर आगे चोट लगे तो प्रतिकूल जो वृत्ति वो नष्ट हो, तो बार बार मार पड़ने से अनुकूलता और प्रतिकूलता जो एक भाव है वो कमजोर हो जाता है, क्षय हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है, तो उसमें पति के अनुकूल ही पति की अनुकूलता में अनुकूलता, पति की प्रतिकूलता प्रतिकूलता अपने कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो भगवान का जो भगत है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसका अपना कुछ भी नहीं है, भगवान के अनुकूल में ही अनुकूल और अपना कुछ भी नहीं, तो उसमें भी एक प्रकार से अपने अनुकूलता प्रतिकूलता की जो वृत्ति है उस पर चोट लगती है। ऐसे कोई शिष्य गुरु का तो एक प्रकार से थी जो गुरु के हुक्म के बाबत ये चलता है, नहीं तो वो शिष्य क्या रहा, गुरु के उद्देश्य के बाबत हुक्म के बाबत संकेत के बाबत चलता है, तो अपना मन की जो अनुकूलता है वो चाहता है कि मैं अमुक जो खेल रंग ले जाऊं, मेले में जाऊं, पर गुरु कहता है नहीं तो नहीं जा सकता, तो बार बार इस प्रकार से थी अपनी अनुकूलता पर बाधा आती है तो अनुकूल वृद्धि का छेदन हो जाता है, ऐसी प्रतिकूल जो है वो कार्य करना पड़े गुरु के हुक्म से थी, तो बार बार ऐसा करने से गुरु के प्राण जाना पड़े, ऐसी अवस्था के बीच के वहाँ जो प्रतिकूल जो वृत्ति वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे माता पिता की सेवा करना चाहती, माता पिता उनके मन के कोई काम विरुद्ध है एक प्रकार से शुरू करना पड़ता है, और माता पिता कोई विरुद्ध काम करते हैं तो पुत्र की बात नहीं मानते हैं तो पुत्र की चोट लगती है मन के बीच के वहाँ, इस वास्ते अपने मन के वहाँ जो प्रतिकूल भाव है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से थी उसके मन में कहे कि ये ऐसा करूँ ऐसा करूँ, तो पिता कहता नहीं, माँ कहती नहीं, तो वो नहीं करने पाता, नहीं करने पाने के कारण से बार बार उस पर चोट लगती है, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों दृष्टिया का छेदन होकर के केवल विनाश हो जा रहे। इसी प्रकार से सब प्रकार के साधनों से तो समझिए समता आ जाओ, समता आ जाए, जो कुछ हो रहा है बस देख रहे तो समता आ जाने से उसकी मुक्ति हो जाओ। तो यह बात एक प्रकार से समता के विषय में आपको बतलाई। इसी प्रकार से थी समझो कि आपने सत्य के विषय में तो अपनी जो वाणी है
वो भी सत्य होनी चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। सत्य वही है कि जो देखी बात देखी सुनी समझी वैसी की वैसी कहने अधिक कहने कम कर, और कम तो रही तो है, हिंसा रही तो है, वो असली सत्य है। तो ऐसे सत्य से आत्मा शुद्ध होकर के मुक्ति हो जाती है, और व्यवहार भी सत्य होना चाहिए।
हृदय का भाव भी, हृदय में जो सब हृदय में जो भाव जो हो सत्य होता है, तो उसकी बार की क्रिया भी सत्य होती है। तो समझो कि सबके साथ वह सत्य व्यवहार और सबके साथ के बीच के समव्यवहार, वाणी में भी सत्यता, व्यवहार में भी सत्यता, हृदय में भी सत्यता। हृदय का तो जो भाव है वो नियत है, बहुत उत्तम अच्छी जो नियत है वो ये तो अच्छा भाव होता है, अच्छा भाव समझे जाता है। तो भीतर का जो भाव है वो भी अच्छा नीत बहुत ही बढ़िया, तो उसका शीघ्र उद्धार हो सकता है। और व्यवहार भी सबके साथ में सच्चाई के साथ करे भी, झूठ कपट बेईमानी नहीं, झूठ कपट चोरी बेईमानी छिपाव ये बिल्कुल नहीं है, तो वो एक प्रकार से सत्य व्यवहार है। ऐसा हृदय का समझो कि सत्य हृदय का भाव है, सत भाव साधु भावे से सत्य समझिए भावन अस्तित्व के वहां प्रयोग किया गया भाव।